चतुर्थ उल्लास। यद्यपि प्रथम द्वितीय व तृतीय उल्लास में काव्य स्वरूप शब्दार्थ काव्यम इत्यादि और शब्दार्थ का निर्णय इसी प्रसंग में अविधा लक्षणा व व्यंजना व्यापार का भी निर्णय हो चुका है। अब काव्य के धर्म दोष गुण अलंकारों का स्वरूप कथन अवशिष्ट था, पर धर्मी काव्य के प्रतिपादन किए बिना उसके धर्मों की हेयोपादेयता का उचित मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसलिए पहले उत्तम काव्य ध्वनि काव्य के मुख्य भेदों का निरूपण करते हैं। ध्वनि के मुख्य भेद। ध्वनि मूलतया दो प्रकार की होती है, अभिधा मूला ध्वनि तथा लक्षणा मूला ध्वनि। द्वितीय उल्लास में जिस लक्षणा का विवेचन किया है उसी का प्रयोजन व्यंग्य होता है और वाच्य विवक्षित नहीं होता, अर्थात मुख्यार्थ का वाच्य बाध होता है। अतएव इस लक्षणा मूला ध्वनि को अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। इसके भी पुनः अर्थ के कभी अर्थांतर में संक्रमित हो जाने से और मुख्यार्थ को बिल्कुल छोड़ देने से दो भेद होते हैं, एक अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। लक्षणा मूला ध्वनि अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण स्वामस्मि वच्मि विदुषाम समुदायोत्र तिष्ठति आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थिति मत्र विधेहि तत्। अपने शिष्य के प्रति किसी विद्वान की यह उक्ति है, मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ विद्वानों का समुदाय रहता है, अतः जरा सोच समझ कर रहना। यहाँ जब वक्ता और बोधव्य जब आमने सामने हैं, तो अस्मि त्वाम वच्मि यह पद अनुपयुक्त होते हुए अर्थांतर उपदेश तुमको हित भावना से उपदेश देता हूँ इस अर्थ में वाच्य परिणत हो जाता है। शिष्य के प्रति उसका हित संपादकत्व व्यंग है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधधि दृश्यमेव सदा सखे सुखित मास्व ततः सरदाम शतम। आपकारी मित्र के प्रति किसी की यह उक्ति है, आपने बड़ा उपकार किया है, कहाँ तक प्रशंसा की जाए। हे मित्र, सदा ऐसा ही करते हुए तुम सैकड़ों वर्ष तक सुखी रहो। यहाँ उपकृतादि शब्द अपने अर्थ को अत्यंत रसित करते हुए अपकृतम आकार में परिणत हो जाता है। अपकारातिशय प्रकाशन व्यंग्य है। अविधा मूला ध्वनि या विवक्षित कान्य परवाच्य ध्वनि जहाँ वाच्यार्थ बाधित न होते हुए अन्य परक व्यंग्य परक होता है, अर्थात वाच्यार्थ अपने स्वरूप का बिना किसी रुकावट के प्रकाशन करता हुआ व्यंग्य में परिवर्तित होता है। यहाँ वाच्यार्थ व व्यंग्यार्थ के बीच जो क्रम है वह कहीं लक्षित हो जाता है और कहीं वाच्यार्थ से इतनी जल्दी व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है कि वहाँ बीच में क्रम लक्षित नहीं होता है। इसी क्रम के लक्षित और अलक्षित के कारण पुनः विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि के दो भेद होते हैं, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि का जो असंलक्ष्य क्रम ध्वनि नामक भेद है, इसी भेद के अंतर्गत रस भाव रसाभाव व भावाभास भाव शांति आदि सभी आ जाती हैं। रसादि की जहाँ पर प्राधान्य स्थिति होगी, अन्य वाक्यार्थ या अलंकार जहाँ उपस्कार होंगे वही पर रस भावनादि को विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि का भेद माना जाएगा, अन्यथा इसके विपरीत स्थिति में तो यदि कहीं अन्य वाक्यार्थ प्रधान हो और रसादि अंग भूत उसके उपस्कार हो तो ऐसी स्थिति में क्रमशः रस के अंग होने पर रसवत अलंकार और भाव के अंग होने पर प्रयोलंकार और रसाभाव व भावाभास के अंग होने पर ऊर्जस्वी अलंकार होंगे। भाव शक्ति के अंग होने पर समाहितादि अलंकार होते हैं। जैसा कि ध्वनि लोककार का कथन है, प्रधाने न्यत्र वाक्यार्थे यत्रांगतु रसादयः काव्ये तस्मिलंकारो रसादिरतिमे मतिः। आनंद वर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक में उक्त कारिका द्वारा अलंकार्य तथा अलंकार का विषय विभाग व्यवस्थित किया था। उनका कहना था कि रसादि उसी स्थिति में अलंकार्य हो सकते हैं जब वे प्राधान्य अभिव्यक्त होते हैं, अन्य वाक्यार्थ या अलंकार उनके उपस्कारक हो। यदि इससे विपरीत स्थिति रस भावादि कि कहीं देखी जाए तो वे रस वटादि अलंकार ही माने जाएंगे, अर्थात वे प्रधान ध्वनि के भेद न होकर गुणीभूत व्यंग के ही भेद होंगे। कुंतक का विरोध। पूर्वोक्त आनंद वर्धन की अलंकार तथा अलंकार के विषय विभाग व्यवस्था के प्रतिकूल कुंतक की मान्यता है। कुंतक ने अपने तर्क व वितर्कों के द्वारा स्वभावोक्त तथा रसवत अलंकार का जोरदार शब्दों से खंडन किया है। वे इन दोनों अलंकारों के विषय में प्राचीन दंडी आदि अलंकारिकों के मत से सहमत नहीं है। स्वभावोक्त की अलंकारता का खंडन करते हुए उन्होंने लिखा है, अलंकार कृताम एषाम स्वभावोक्ति रलंकृति अलंकार्यतया तेषाम किमन्य दवतिष्ठते। जिन दंडी सदृश अलंकारों के मत में स्वभावोक्ति भी अलंकार है, उनके मत में फिर अलंकार क्या रह जाता है? अर्थात कुंतक के अनुसार स्वभाव ही अलंकार है। उसको अलंकार मान लेने पर पुनः अलंकार किसको कहा जाए? इस विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत भी कुंतक के ही अनुकूल है। उनके तर्क का इस प्रकार है, प्रस्तुत विषय में अप्रस्तुत विधान अर्थात वर्ण वस्तु तथा वर्णन प्रणाली में भी स्पष्ट अंतर है। स्वभावोक्ति प्रस्तुत वर्ण विषय है, अलंकार वर्णन प्रणाली है, अतएव स्वभावोक्ति अलंकार नहीं हो सकती। दो, स्वभावोक्ति की अलंकारता इसी से प्रसिद्ध है कि उसका कोई निश्चित लक्षण नहीं मिलता। किसी ने उसे स्वक्रिया रूप वर्णन कहा है और किसी ने अवस्था वर्णन और किसी ने उसे सूक्ष्म स्वभाव वर्णन। तीन, मम्मट की परिभाषा में निर्दिष्ट बालक आदि पद का आशय अत्यंत अस्पष्ट है। स्वयं बालकों की रूप चेष्टा का वर्णन वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है, वह रस का अंग है, अलंकार नहीं। और यदि डिम्भादेह की व्याप्ति सृष्टि की नाना वस्तुओं के रूप और व्यापार तक मान ली जाए तो वह वर्ण वस्तु ही वर्णन प्रणाली नहीं है। स्वभावोक्ति की ही भांति कुंतक ने रसवत अलंकार की भी अलंकार की श्रेणी से हटाकर अलंकार पदवी से भूषित किया। अलंकारों न रसवत परस्या प्रतिभासना स्वरूपातिरिक्त शब्दार्थ संकेतरपि रसादि की प्रतीति के स्थल में रस के अपने स्वरूप के अतिरिक्त अन्य किसी की प्रतीति न होने से और रस के साथ अलंकार शब्द का प्रयोग करने पर भी शब्द तथा अर्थ की संगति न होने से रसवत अलंकार नहीं अपितु अलंकार्य है। कुंतक के मत से रसवत अलंकार अलंकारों का चूड़ा मणि है। निरस व जड़ पदार्थों में सरसता लाने के लिए सतकवियों का अद्भुत साधन है। तीन, यह अलंकार प्रतीयमान ही होता है। कुंतक के शब्दों में इसका मौलिक स्वरूप यह है, रसेन वर्तते तुल्यम रसवत्य विधानतः यो अलंकार सरसवत तद्विदा लाद निर्मितेह। पर आनंद वर्धन की स्थापना उनके ध्वनि सिद्धांत के अनुकूल ही है। जहाँ रसाभावादि अन्य वस्तु या अलंकार रूप व्यंग का उत्कर्ष करेगा, वहाँ रस उपस्कारक होने से अलंकार का कार्य करता है। ऐसी स्थिति में रसत्व प्रमुख चमत्काराधायक होने पर भी प्राधान्य के न रहने से भृत्य के विवाह में प्रवित्य राजा की तरह उसकी स्थिति होती है। राजा जैसे उस भृत्य के बारात का अंग बनकर शोभा बढ़ाता है, रसवत अलंकार में भी उस रस स्वयं अंग बनकर अन्य वाक्यार्थ की शोभादायक होता है, अतः यह ध्वनि का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता है। स्वभावोक्ति अलंकार के विषय में जो कुंतक का आक्षेप है, वह किसी वस्तु के सामान्य विशेष भाव को बिना देखे ही है। ममटादि अलंकारिकों का अभिप्राय विशिष्ट स्वभाव वर्णन है, स्वभावोक्ति अलंकार है। मही भट्ट ने भी वस्तु के दो रूप माने हैं और अलंकार के लिए वे इसका विशिष्ट रूप ही उपयुक्त मानते हैं। आगे हेमचंद्र ने तो अपने काव्यानुशासन ग्रंथ में साफ ही कहा है कि वस्तु का सामान्य स्वरूप भले ही अलंकार हो, पर लोकोत्तर अर्थ अलौकिक उस वस्तु का जो सौंदर्य है वह अलंकार है, वही कवि के वर्णन का विषय है। नाट्य शास्त्र में अंगज हाव भाव आयतन शोभा कांति आदि स्वभावज लीला विलास आदि को जिस प्रकार नाट्य अलंकार के रूप में माना है। इसी प्रकार किसी बालक के अमृत के भी उसकी सहज या आहार जो चेष्टाएं हैं वे भी अलंकार हैं। यह स्वभावोक्ति को अलंकार मानने में एक हेतु है। रस निरूपण, लोक में रति आदि के जो कारण, कार्य और सहकारी कारण होते हैं वे ही काव्य व नाटक में वर्णित हो तो क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। उन विभाव आदियों से अभिव्यक्त वह रति ही रस कहलाता है। कारणान्यज कार्याणी सहकारिणी यानी च रत्यादि स्थायिनो लोके तानि चिन्नाट्य काव्ययोः विभावा अनुभावादा तत्पथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतै विभावा देहि स्थायी भावो रसः स्मृतः। स्थायी भाव यद्यपि वे रत्यादि सब अंतःकरण की वृत्ति रूप है, वृत्ति विशेष होने के कारण आशु विनाशी अस्थिर है। इन्हीं को अन्य शास्त्रकार या मनोवैज्ञानिक भाव शब्द से कहते हैं। ये भाव कभी अनुकूल होते हैं और कभी प्रतिकूल। समुद्र की लहर की तरह ये चंचल हैं, पर इनका संस्कार जिसे वासना कहते हैं वह स्थिर है। यही वासना सूक्ष्म रूप स्थिर होने के कारण स्थायी कहा जाता है। आधुनिक भाषा में इसे इस प्रकार कह सकते हैं, मनुष्य के अवचेतन के मन के अंतराल में बहुत समय तक सूक्ष्म रूप से छिपने वाले भाव को ही स्थायी भाव कहते हैं। यही प्रसुप्त संस्कार उपयुक्त विभावादि सामग्री को प्राप्त कर जब अभिव्यक्त होता है तब रस इस संज्ञा को प्राप्त करता है। इसलिए मम्मट ने भी कहा, व्यक्त स्वतः विभावादे स्थायी भाव रस स्मृत। दो विभाव वासना रूप में वर्तमान रत्यादि स्थायी भावों की आस्वाद योग्यता को जो कारण प्रदान करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव यन्ति आस्वाद योग्यताम नयन्ति विभावा। ये विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। जैसे सीता को देखकर राम के मन में और राम को देखकर सीता के मन में रति भाव या अनुराग की उत्पत्ति होती है, और इन दोनों को देखकर नाटक में या काव्य में पढ़कर सामाजिक के मन में भी आनंद की अभिव्यक्ति होती है। अतः सीता रामादि श्रृंगार रस की आलम्बन विभाव है और चंद्र चांदनी उद्यान आदि रति के उद्दीपन विभाव है। तीन अनुभाव अंतःकरण में अवस्थित विभाव द्वारा उद्भूत उस रति जो उपादान दर्शकों के अनुभव में ला देते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव यंति अनुभव विषय कुर्वंती अनुभावः स्मितादि लोक में इन्हें कार्य कहते हैं। चार व्यभिचारी भाव उद्भूत हुए स्थायी भाव की पुष्टि या उपचय में जो उनके सहकारी होते हैं उन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। विशेषेण अभिसहरत्यादिन कामे चारयन्तीति संचारयन्तीति व्यभिचारिण संचारिणो वा। विविध रूप से स्थायी भाव के अनुकूल संचरण करने वाले भाव हर्ष विषाद चिंता जड़ता आदि ये 33 हैं। रस निष्पत्ति प्रक्रिया भरत मुनि ने रस के उन्मीलन के प्रतिष्ठा सबसे पहले अपने नाट्य शास्त्र में ही में की। इस विषय में इनका प्रसिद्ध सूत्र है जिसको मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में अविकल रूप में रखा है। उक्तम ही भरतेन विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखने में यह सूत्र जितना छोटा है विचार में उतना सार गर्भित है। अतः अनेक आचार्यों ने इस सूत्र पर अपने अपने सिद्धांत के अनुकूल व्याख्या की है। अभिनव गुप्त द्वारा रचित नाट्य शास्त्र की व्याख्या अभिनव भारती में बड़े विस्तार के साथ कई मतों का उपन्यास किया है, पर वहाँ का व्याख्यान अत्यंत कठिन व विस्तृत है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में उसी का संक्षिप्त सार उपस्थित किया है, जिसके प्रमुख व्याख्याता भट्ट लोल्लट, शंकु भट्ट नायक व अभिनव गुप्त ये चार हैं। ये चारों आचार्य क्रमशः मीमांसा, न्याय, सांख्य व साहित्य शास्त्र के प्रकाश में अपना अपना रस विषयक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। एक भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद विभाव आलम्बन व उद्दीपन ललना उद्यान आदि रति आदि उत्पन्न होती है। उसी स्थायी रति के कार्यभूत कटाक्षादि अनुभाव से प्रतीति योग्य किया गया। निर्वेदादि संचारी भावों से पुष्ट किया गया रत्याज स्थायी भाव मुख्य रूप से अनुकार्य रामादि में रहता है, पर उनके स्वरूप का अनुकरण करने से नट में भी प्रतीत होता है, अर्थात नट में भी उसका आरोप होता है। यही नट में आरोप्यमान या प्रतीयमान रत्यादि ही रस है। सूत्र में आए हुए संयोग व निष्पत्ति इन दो शब्दों के विषय में आचार्यों की अपने अपने सिद्धांतानुकूल अलग अलग व्याख्या है। भट्ट लोलट में मानसक है, अतः उन्होंने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग से अनुकार्य रामादि में रस की निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना। विभावादि उत्पादक सामग्री है, स्थायी भाव उत्पाद्य है। जैसे मीमांसा दर्शन में यागादि उत्पादक सामग्री से अपूर्व द्वारा स्वर्ग उत्पाद्य है, उसी प्रकार यहाँ रस भी उत्पाद्य है। अतः विभाव का स्थायी भाव रत्यादि के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध होगा, और अनुभाव का गम्य गमक भाव संबंध और सहचारी भाव का पोष पोषक भाव संबंध है। यही संयोग शब्द का अर्थ है, और निष्पत्ति शब्द का क्रमशः उत्पत्ति, प्रतीति व पुष्टि ये अर्थ होते हैं। भट्ट लोलट के मत में अरुचि। भट्ट लोलट की इस व्याख्या में सबसे बड़ी कमी यह है कि वे रसानुभूति को सामाजिक में न मानकर मुख्य रूप अनुकार्य रामादि में मानते हैं, और उसका आरोप या अप्रधान रूप से नट में मानते हैं। इन दोनों में भी अभिव्यक्ति न मानकर उत्पत्ति मानते हैं। शंकु का अनुमितिवाद, यह राम ही है, यही राम है, यह राम नहीं है, यह राम है, या नहीं, यह राम के समान है, इस तरह क्रमशः सम्यक प्रतीति, मिथ्या प्रतीति, संशय प्रतीति तथा सादृश्य प्रतीति, इन चारों प्रकार की प्रतीतियों से भिन्न प्रतीति चित्र तुरग न्याय वाली प्रतीति नट में होती है। अर्थात चित्र में अंकित घोड़े को बालक जैसे घोड़ा ही समझता है, उसी प्रकार गाय या पक्ष नट में राम बुद्धि होती है, वह भी इन चार प्रकार की प्रतीतियों से विलक्षण होती है। यह राम सीता विषयक रति वाला है, तद विषय कटाक्षादि युक्त होने से इस नट पक्ष में कटाक्षादि हेतुओं से सीता विषयक राम की रति का अनुमान किया जाता है। यहाँ विभावादि का रत्यादि के साथ जो संयोग संबंध विशेष है वह गम्य गमक भाव है, विभावादि गमक है और रत्यादि गम्य। अनुमेय है वस्तु सौंदर्य की विशेषता से यह अनुमान अत्र अनुमीयमान अर्थों से विलक्षण है। रस की निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति है। नट में वास्तविक रूप से न रहने वाले रत्यादि का सामाजिक अपने वासना के बल से नट पक्ष में अनुमान कर लेता है। वस्तुतः अनुमित रस न सामाजिक में रहता है और न कृत्रिम राम में ही रहता है, केवल वासना मात्र से सामाजिक को उसका आस्वाद होता है। शंकु की यह रस की अनुमिति न्याय दर्शन के अनुसार है। न्याय शास्त्र अनुमिति प्रधान शास्त्र है, इसलिए इसमें पक्ष हेतु व साध्य की कल्पना की गई है। शंकुक के मत में अरुचि। यद्यपि शंकुक ने सामाजिक में रस प्रतीति संपादन करने का अच्छा प्रयत्न किया है, परंतु उस रस प्रतीति को अनुमेय बनाकर अनुमान द्वारा रस निष्पत्ति उपपादन किया है, जबकि सामाजिक को रस का साक्षात्कार होता है और अनुभव से होने वाला ज्ञान परोक्ष है, साक्षात्कारात्मक नहीं। भट्ट नायक का भुक्तिवाद। भट्ट नायक ने रस की व्याख्या में सबसे पहले दर्शक या सामाजिक के महत्व को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि रस की निष्पत्ति न तो अनुकार्य रामादि में होती है और न अनुकर्ता नटादि में ही होती है। ये दोनों अनुकार्य और अनुकर्ता तटस्थ हैं, अतः इसमें रसानुभूति नहीं हो सकती। ये रस की न तो उत्पत्ति मानते हैं, न उसकी प्रतीति मानते हैं और न उसकी व्यक्ति। ये रस को भुक्ति का विषय मानते हैं। रस है भोज्य और विभावादि है भोजक, अतः रस और विभावादि का परस्पर भोज्य भोजक भाव संबंध है। भट्ट नायक काव्य में अभिधा व्यापार के अतिरिक्त दो अन्य नए व्यापारों की कल्पना करते हैं। इनके नाम हैं भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार। काव्य में अभिधा के द्वारा शब्द से अर्थ की उपस्थिति होती है, इसके बाद भावकत्व व्यापार द्वारा उन विभावादि अर्थों का साधारणीकरण हो जाता है, अर्थात नाटकस्थ या काव्यस्थ प्रतिपाद्य विषयी भूत पात्र का व्यक्तिगत उसके विशेष संबंधों का परित्याग हो जाता है। इस भावकत्व व्यापार के बल से रंगमंच में शकुंतलादि पात्र अपने व्यक्ति विशेषांश का परिहार कर सामान्य नायिकात्वेन रूप सामाजिक को दृष्टि में उपस्थित होते हैं। यही विभावादि का साधारणीकरण है। यहाँ व्यक्ति अपने स्व के संबंध विशेष से परिचिन्न न होकर वसुधैव कुटुम्बकम जैसे अपरिमित भाव से संबलित हो जाता है, फिर वहाँ स्व पर कोई परिधि नहीं होती है। एक तरह से यह साधारणीकरण व्यापार साहित्य शास्त्र में व्यक्ति के अंतःकरण का उदासीकरण व्यापार है, जहाँ चित्त राग द्वेषोपेक्षा आदि परिमित प्रपंच से ऊपर रहता है। यह सब कार्य है भावकत्व या साधारणीकरण व्यापार का, जिसके बल से हनुमान आदि राम सेवकों को समुद्र लंघन आदि जैसा अपरिमित उत्साह हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि पात्र का यहाँ परिमित भाव विगलित होकर सामान्य अपरिमित भाव का उदय हो जाता है। तदनंतर भोजकत्व व्यापार के द्वारा दर्शक या सामाजिक रस का भोग करता है। इस अवस्था में प्रमाता के अंतःकरण में स्थित रजोगुण व तमोगुण सत्व सत्व गुण की अधिकता के कारण दब जाते हैं। सत्व के समुद्रेक के कारण चित्त निर्मल हो जाता है, साथ ही साथ उसमें चैतन्य का भी प्रतिफलन होता है। यद्यपि ये भाव रत्यादि चित्त में ही है, चैतन्य से उनका संबंध नहीं है, पर चिच्छायापत्ति में वहाँ चित्त व चैतन्य की एक रूपता मालूम पड़ती है। उस रति का भोग तो बुद्धि या अंतःकरण अथवा चित्त होने पर भी बुद्धिर भोग इवात्मनि के अनुसार आत्मा में भोग का आरोप किया जाता है। अतः भट्ट नायक का यह भुक्तिवाद सांख्य सिद्धांत के अनुसार है। इस दर्शन के अनुसार सुख दुख वस्तुतः अंतःकरण के धर्म है, न कि आत्मा के। पुरुष आत्मा में तो उनकी औपाधिक प्रतीति होती है। इस भट्ट नायक के मत के अनुसार सूत्र में आए हुए संयोग शब्द का अर्थ भोज्य भोजक या भाव भावक भाव संबंध है, तथा निष्पत्ति शब्द का अर्थ भुक्ति है। भट्ट नायक के मत में अरुचि, यद्यपि भावकत्व व भोजकत्व व्यापार की कल्पना कर भट्ट नायक ने रस सिद्धांत को समझाने का एक स्तुत्य प्रयास किया है, और भावकत्व व्यापार की नई उद्भावना से साहित्य शास्त्र की बहुत सी संकीर्णताओं को दूर करने का सफल प्रयास किया है, और साधारणीकरण की इस प्रक्रिया की प्रतिष्ठा करके अपने मनोवैज्ञानिक परिशीलन का परिचय भी दिया है। भावी आलंकारिकों ने जिसका यथेच्छ उपयोग भी किया है, परंतु जो दो नए भावकत्व व भोजकत्व नामक व्यापारों की कल्पना की है, इस पर अधिक विद्वानों की सम्मति नहीं रही। अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद। साहित्य शास्त्र में अभिनव गुप्त ध्वनिवादी आचार्य हैं, आनंदवर्धन के ध्वनि तत्व के व्याख्याता हैं और भरत मुनि के रस तत्व के भी व्याख्याता हैं। रस ध्वनि के प्रभेदों में अन्यतम प्रभेद हैं। यह अभिधा का विषय नहीं है और लक्षणा से ही लक्षित है, अपितु व्यंजना शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार रस तथा विभावादिकों में परस्पर व्यंग्य व्यंजक भाव है। अभिनव गुप्त का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति में श्रोता या वक्ता में राग द्वेष शोक क्रोधादि भाव विद्यमान रहते हैं। ये भाव अपनी उपयुक्त सामग्री को पाकर प्रबुद्ध हो जाते हैं, अन्यथा चित्त शैया में प्रसुप्त ही रहते हैं। प्रतिदिन के संघर्ष से इनका सूक्ष्म संस्कार अंतःकरण में घर कर लेता है, यही वासना रूप में हृदय में स्थिर हो जाते हैं। इन्हीं को स्थायी भाव भी कहते हैं। यही वासना जिसमें परिपूर्ण है वही रस का अनुभव करता है, तत्त्व भावनाओं तत्त्व उद्बोधक सामग्री की सहायता से अपना उपचय करती है। इन्हीं भावनाओं के उन्मिलन व विकास का क्रम यदि काव्य व नाट्य में वर्णन किया जाता है तो वे कुछ अलौकिक आनंद को प्रदान करते हैं। काव्य में इस उत्पादक सामग्री का वर्णन कार्य कारण सहकारी कारण न होकर विभाव अनुभव व संचारी भाव के नाम किया जाता है। यही विभावादि उक्त वासना रूप में स्थित स्थायी की अभिव्यक्त करते हैं, और व्यंजना व्यापार के द्वारा इन विभावादिकों का साधारणीकरण तथा रत्यादियों का रस रूप में अभिव्यंजन होता है। रसाभिव्यक्ति की दशा में सभी वस्तुओं का साधारणीकरण हो जाता है और सामाजिक भी अपने को सामान्य रूप में ही पाता है। वह रस को केवल अपने स्व व्यक्ति तक न मानकर सभी सामाजिकों को रस का अनुभवकर्ता मानता है। यह आनंद सामान्य लौकिक आनंद से विलक्षण ब्रह्मानंद सहोदर है। यही रस के अलौकिकत्व का रहस्य है कि अन्य आनंद जो कि अपने कारण पर निर्भर रहते हैं वे सुख दुखादि के भी जनक होते हैं, पर यह तो दुख कारणों से समुत्पन्न हुआ भी सुख की ही अनुभूति कराता है। जैसे शोक बुद्धि या भय स्थायी भाव से अभिव्यक्त करण रौद्र या भयानक प्रमाता को आनंदानुभूति ही कराता है। इसलिए कहा है रसो वैसा रसम एवं लब्ध्वा यमानंदी भवति, रस की अलौकिकता। अभिनव गुप्त ने रस को अलौकिक कहा है, अर्थात वह अन्य वस्तुओं से भिन्न है। मम्मट ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है, लोक में पाई जाने वाली अनित्य वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक कार्य रूप और दूसरी ज्ञाप्य रूप। घटपट आदि पदार्थ कार्य रूप हैं, ये किसी कारण से संपन्न होते हैं इसलिए कार्य हैं, और इनका जनक कारण कारक कहलाता है। दूसरे प्रकार के विषय ज्ञान के विषय या ज्ञाप्य होते हैं, जैसे दीपक के प्रकाश में घट का ज्ञान होता है इसलिए दीपक के द्वारा घट ज्ञाप्य है। पूर्व सिद्ध पदार्थ का जब किसी साधन के द्वारा ज्ञान होता है तो वह ज्ञाप्य कहा जाता है। जो पूर्व सिद्ध नहीं है, कारण व्यापार से निष्पन्न होता है, वह कार्य कहलाता है। संसार के सारे पदार्थ इन्हीं दो वर्गों में आते हैं, परंतु रस न तो कार्य है और न ज्ञाप्य ही। कार्य इसलिए नहीं है कि कार्य तो निमित्त नाश होने पर भी बना ही रहता है, जैसे घटादि कार्य निमित्त कारण कुम्हार के मर जाने पर भी बने रहते हैं, पर रस तो अपने निमित्त वैभावादि अवधि तक है, अतः कार्य नहीं है। रस ज्ञाप्य इसलिए नहीं है कि वह पूर्व सिद्ध नहीं है, अनुभव से पूर्व रस की सत्ता नहीं है, अपितु अनुभव काल में ही व्यंजना व्यापार द्वारा वह अभिव्यक्त होने वाला है। इन दोनों वर्गों में न आने से रस लोक विलक्षण ही कोई आनंद है, पुनश्च यह वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। अर्थात लौकिक प्रत्यक्ष के जितने प्रकार हैं, उन सबसे विलक्षण अलौकिक साक्षात्कारात्मक या अलौकिक अपरोक्षानुभूति स्वरूप है। अस्मदादि का साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा ही होता है, और मिति योगी सविकल्पक समाधि में स्थित युंजान पदवाच्य का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के बिना भी केवल योगज सामर्थ्य से भी हो जाता है। तीसरे परिमितेतर योगी परिपक्व निर्विकल्प समाधि में स्थित योगी का ज्ञान वेद्यांतर के स्पर्श से रहित केवल आत्मानुभूति मात्र होता है। रस की अनुभूति इन तीन प्रकार के ज्ञानों से विलक्षण है, वह न तो अस्मदादि के प्रत्यक्ष के समान प्रत्यक्ष प्रमाणों से उत्पन्न होती है, न प्रमाण तथ्य वाले मिति योगी के ज्ञान का विषय है, और न निर्विकल्प समाधि में स्थित योगियों की वेद्यांतर स्पर्श रहित आत्मानुभूति ही है। इस प्रकार इन तीनों प्रकार की अनुभूति से विलक्षण होने के कारण वह अलौकिक ही है, और इसलिए भी वह अलौकिक है। उसका ग्रहण न सविकल्प ज्ञान से हो सकता है और न निर्विकल्प ज्ञान से, क्योंकि रस की प्रतीति में विभावादि के पर परामर्श की प्रधानता होने से निर्विकल्प ज्ञान उसका ग्राहक नहीं हो सकता है, और आस्वाद्यमान अलौकिक आनंदमय रस के स्व संवेदन सिद्ध होने से सविकल्प ज्ञान भी उसका ग्राहक नहीं हो सकता है। तथा उभयाभाव स्वरूप का निर्विकल्पक तथा सविकल्पक दोनों से भिन्न उस रस का उभयात्मकत्व भी पहले के समान लोकोत्तरता को ही बोधित करता है, यही श्रीमान महामहेश्वर अभिनवगुप्त पदाचार्य का मत है। विभावादि की सम्मिलित रूप से कारणता व्याघ्रादि विभाव भयानक रस के समान वीर अद्भुत तथा रौद्र रस के प्रति भी हो सकते हैं। अश्रुपात आदि अनुभव श्रृंगार के समान करुण तथा भयानक रस के भी हो सकते हैं। चिंता आदि व्यभिचारी भाव श्रृंगार के समान वीर करुण तथा भयानक रस के भी हो सकते हैं, इसलिए उनके अलग अलग अनैकांतिक होने से अर्थात किसी एक ही रस के साथ निश्चित न होने से सूत्र में उनको सम्मिलित रूप से निर्दिष्ट किया गया है। विभावादि के मध्य में तीनों में से एक या दो के अनुक्त होने पर भी आक्षेप द्वारा उनका बोध जैसे वीर दलित मलिनाम्बु गर्भम मेधम इत्यादि में दयिता रूप आलम्बन व वर्षा काल उद्दीपन विभाव मात्र का वर्णन है। परिमृदित मृणालिम बलानमंग प्रवृत्ति इत्यादि में मालती के अंग ग्लानी पांडुता आदि केवल अनुभावों का वर्णन है, और दूरा दुत्सुख मागते विवलितम संभाषिणी स्फारितम इत्यादि में केवल औत्सुक्य आदि व्यभिचारी भावों का ही वर्णन किया गया है। फिर भी इनके प्रकृति के बोध में असाधारण ज्ञापक होने से शेष दो का आक्षेप हो जाता है, अतः तीनों के सम्मिलित रूप से रस निष्पत्ति सिद्धांत में कोई दोष नहीं आता है। रसों के भेद श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्साद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः एक श्रृंगार दो हास्य तीन करुण चार रौद्र पांच वीर छह भयानक, सात विभत्स और आठ अद्भुत ये आठ रस नाट्य में माने जाते हैं। भाव के भेद। भाव दो प्रकार के होते हैं, एक वे हैं जो स्थिर रहने की योग्यता रखते हैं, ये स्थायी भाव कहलाते हैं। दूसरे वे हैं जो कई क्षणों तक ही स्थिर रहते हैं, इसी अस्थायीता के कारण इन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है, परंतु स्थायी भावों के विषय में बड़ा मतभेद है। अभिनव गुप्त व मम्मट इनकी संख्या 9 ही मानते हैं और इनसे उत्पन्न होने वाले रसों की संख्या भी 9 मानते हैं। स्थायी भाव रस वर्ण देवता रति श्रृंगार श्याम विष्णु दो हास हास्य श्वेत प्रमथ शोक करुण कपोत यम क्रोध रौद्र रक्त रुद्र उत्साह वीर हेम महेंद्र भय भयानक कृष्ण भूत जुगुप्सा विभत्स नील महाकाल विस्मय अद्भुत पीत गंधर्व शम शांत इंदु वर्ण नारायण। आगे चलकर स्थायी भावों की तथा रसों की संख्या बढ़ती गई। विश्वनाथ कविराज ने वात्सल्य भाव तथा वात्सल्य रस की प्रतिष्ठा की तथा रूप गोस्वामी ने माधुर्य रस अथवा भक्ति रस नामक एक नवीन रस की प्रतिष्ठा की। इसका विस्तृत विवेचन इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि में किया है। इस भक्ति रस का भी स्थायी भाव रति ही है, परंतु अंतर इतना है कि यहाँ दिव्या कृष्ण विषयक रति ही भक्ति रस के लिए स्थायी भाव मानी गई है। शांत रस के विषय में भी मतभेद है। धनंजय नाटक में शांत रस की स्थिति नहीं मानते हैं। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव 33 हैं। एक निर्वेद, दो ग्लानी, तीन शंका, चार श्रम, पांच घृति, छह जड़ता, सात हर्ष, आठ दैन्य, नौ उग्रता, दस चिंता, ग्यारह त्रास, बारह ईर्ष्या, तेरह अमर्ष, चौदह गर्व, पंद्रह स्मृति, सोलह मरण, सत्रह मद, अठारह सुप्त, उन्नीस निद्रा, बीस विबोध, इक्कीस क्रीड़ा, बाईस अपलाप, तेईस मोह, चौबीस मति, पच्चीस आलस्य, छब्बीस आवेग, सत्ताईस वितर्क, अट्ठाईस अवहित्था, उनतीस व्याधि, तीस उन्माद, इकतीस विषाद, बत्तीस औत्सुक्य, तैतीस चापल इत्यादि हैं। श्रृंगार रस और उसके भेद। इन रसों में सर्वप्रथम श्रृंगार रस है, एक स्थायी भाव रति नायक तथा नायिका का अनुराग, दो आलंबन विभाव, आलंबन विभाव परस्पर एक दूसरे के, उद्दीपन विभाव चंद्र चांदनी उद्यान आदि, अनुभाव अनुराग पूर्व चेष्टा में परस्परावलोकन आदि, व्यभिचारी भाव हर्ष चिंता मद उत्कंठा आदि। श्रृंगार के मुख्य दो भेद होते हैं, संभोग श्रृंगार तथा विप्रलम्भ श्रृंगार। एक दूसरे में अनुरक्त नायक नायिका का परस्पर मिलन युक्त श्रृंगार संभोग श्रृंगार है। उदाहरण, शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित छन्नई निद्रा व्याजमुपगातस्य सुचिरम निर्वण्य पत्युर्मुखम विशब्दम परिचुम्ब्य जात पुलका मालोक्य गंडस्थलिम लज्जा नम्रमुखी प्रेण हस्ता बाला चिरम चुंबिता। नायक यहाँ आलम्बन विभाव है, शून्य वासगृह उद्दीपन विभाव है, मुख निर्वर्णन चुमनादि अनुभव है, लज्जा हास तथा उससे व्यंग हर्षादि व्यभिचारी भाव है। इनसे अभिव्यक्त रति की चरणा ही श्रृंगार रस है। विप्रलम्भ श्रृंगार, विप्रलम्भ श्रृंगार उसे कहते हैं जहाँ उत्कट अनुराग होने पर भी प्रिय समागम न हो सके। यह अभिलाष विरह ईर्ष्या प्रवास शाप हेतुओं के भेद से पांच प्रकार का होता है। साहित्य दर्पणकार आदि कुछ आचार्यों ने इसे चार ही प्रकार का माना है। पूर्वानुराग मानाख्य प्रवास करुणात्मना विप्रलम्भा विधानो अयम श्रृंगारम क्या चतुर्विध। पूर्वानुराग मान प्रवास करुण विप्रलम्भ के भेद से यह चार ही प्रकार का माना जाता है। विप्रलम्भ सामान्य का उदाहरण, कामालिख प्रणय कुप्ता धातुराग शिलाया महात्मानं ते चरण पतितं यावदिच्छामि कर्तुम् अस्त्रे सावन मुहु रूप चितै दृष्टि रालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमम नौकृतांतः। यहाँ पद महाकवि कालिदास के मेघदूत का है। प्रिया को उद्देश्य कर्मयोगी यक्ष का विलाप इस प्रकार है। पत्थर की शिला पर गसे आदि धातु के रंगों से तुम्हारा चित्र बनाकर मैं जब तक चित्र में अपने को तुम्हारे चरणों में गिराना चाहता हूँ तब तक आंसू बढ़कर मेरी दृष्टि को आच्छादित कर देते हैं और मैं उस चित्र को पूरा नहीं कर पाता हूँ। निष्ठुर दैव उस चित्र में भी हमारे संगम को सहन नहीं करता है। यहाँ नायिका आलम्बन है, उसका प्रणय कोप उद्दीपन है, चरण पातादि अनुभव है, वेदांत विषयक असूयादि संचारी भाव है। इससे अभिव्यक्त विप्रलम्ब रति की चरवणा ही विप्रलम्ब श्रृंगार है। दो हास्य रस विकृत आकार वेश चेष्टा आदि व्यवहार के वर्णन से हास्य रस होता है। एक स्थायी भाव हास, दो आलम्बन विभाव विकृत वेश या विकृति चेष्टा युक्त व्यक्ति, उद्दीपन विभाव अनुपयुक्त वचन वेश विन्यास आदि, अनुभाव मुख फैलना आँखों का मीचना आदि, व्यभिचारी भाव निद्रा आलस चपलता आदि। उदाहरण शीश पर गंगा हसे भुजन भुजंगा हसे हास की को दंगा भयो नंगा के विवाह में। पद्माकर कविकृत इस पद में महादेव जी के विवाह का प्रसंग है। यहाँ महादेव जी आलम्बन है, नंगा रूप उद्दीपन है, लोगों का लोट पोट कर हंसना अनुभव है, उत्सुकता चपलता आदि संचारी भाव है। इससे अभिव्यक्त हास स्थायी भाव है। तीन करुण रस स्थायी भाव शोक, आलम्बन विभाव कोई मृत व्यक्ति या दीनहीन व्यक्ति, उद्दीपन विभाव मृत व्यक्ति के दाह विलाप आदि, अनुभव भाग्य को कोसना रोना इत्यादि, संचारी भाव निर्वेद मोह विष आदि। उदाहरण विपिने क्व जटा निबंधनम तव चेदम क्व मनोहरम वपुः, अनयोर घटना विधे स्फुटम ननु खड्गेन शिरीष कर्तनम। वनवास के लिए उद्यत हुए राम के प्रति दशरथ की यह उक्ति है। यहाँ राम आलम्बन है, उनका वन गमनादि उद्दीपन है, दैव निंदा अनुभव है, ग्लानी विषादि संचारी भाव है। इनसे अभिव्यक्त शोक स्थायी भाव की चरवणा करुण है। चार रौद्र रस एक स्थायी भाव क्रोध, दो आलम्बन विभाव अपकारी व्यक्ति या शत्रु, तीन उद्दीपन विभाव मत्सर या शत्रुकृत अपकारादि, चार अनुभाव डिंगे मारना शस्त्र चमकाना आदि, व्यभिचारी भाव अमर्ष मद उग्रता आदि। उदाहरण कृतम अनुमतम दृष्टम वा ऐरिदम गुरुपातकम इत्यादि। द्रोणाचार्य का निधन सुनकर अश्वत्थामा की अर्जुनादियों के प्रति यह उक्ति है। यहाँ अपकारी अर्जुनादि आलम्बन है, पितृवधादि उद्दीपन है, प्रतिज्ञा अनुभव है, गर्वादि संचारी भाव है। इनसे अभिव्यक्त क्रोध स्थायी भाव है। पाँच वीर रस स्थायी भाव उत्साह, आलम्बन विभाव शत्रु जिस पर अधिकार प्राप्त करना है, उद्दीपन विभाव शत्रु का प्रताप शौर्य आदि, अनुभाव हथियार का चलाना नेत्रों का लाल होना इत्यादि, संचारी भाव मति गर्व भीति इत्यादि। इनसे व्यक्ति उत्साह स्थायी की चरवणा ही वीर रस है। उदाहरण शुद्राह संत्रास समेते विजहत हरय क्षुण्ण सक्रे भकुंभाः, युष्मत देहेशु लज्जां दधति मर्ममी सायका निष्पतन्तः, सौमित्रे तिष्ठ पात्रम त्वमसि नहि रूषां नन्वह मेघनादः, किंच दभ्रु भंग लीला नियतमित जलधिम राम मन्वेषयामि। यहाँ यह पद्य हनुमान नाटक का है। लंका के युद्ध के समय मेघनाद की यह उक्ति है। यहाँ प्रतिपक्षी राम आलम्बन है, किंचित भ्रूभंग की ही लीला से समुद्र मंथन कर देना उद्दीपन है, क्षुद्रावसरों की अपेक्षा और प्रतापशाली राम का अन्वेषण अनुभव है, ऐरावत हाथी के गंड स्थल को भेदन करने वाले वाणों का वानरों के शरीर में गिरने से लज्जा का अनुभव करना, इससे अभिव्यक्त गर्व संचारी भाव है, राम से लड़ने का उत्साह स्थायी से और रस की अभिव्यक्ति हो रही है, स्थायी से वीर रस की अभिव्यक्ति हो रही है। छह भयानक रस स्थायी भाव भय, आलम्बन शेर आदि भयानक जंतु या वस्तु विशेष, उद्दीपन भयानक वस्तु या जंतु की चेष्टा आदि, अनुभाव कंपनादि किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, संचारी भाव दैन्य संगम सम्मोह त्रासादि। उदाहरण ग्रीवा भंगाभिराम मुहुर्नुपतति स्यन्दने दत्त दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपत नयभ न भयात भूयसा पूर्वकायम् दर्भे रथ विलोढ़ शम विवृत मुख भ्रंशिभि किरण वर्तमा पश्योदग्र पुलत्वाद व्यति बहुतरम स्तोक मूर्व्याम प्रयाति। यह पद अभिज्ञान शाकुंतलम का है। राजा दुष्यंत के रथ से भयभीत आश्रम की ओर भागते हुए मृग का वर्णन है। यहाँ पीछा करने वाला राजा या रथ आलम्बन है, बाण लगने का भय या अनुसरण उद्दीपन है, गर्दन मोड़कर भागना आदि अनुभव और त्रास श्रम आदि व्यभिचारी भाव हैं। इनसे अभिव्यक्त भय स्थायी भयानक रस सामाजिकों के चरवणा का विषय है। साथ विभत्स रस स्थायी भाव जुगुप्सा आलम्बन दुर्गंधमय मांसादि उद्दीपन मांसादि सड़ना उन्हें दुर्गंध का आना आदि अनुभव नाग भाव सिकोड़ना आदि संचारी भाव आवेग व्याधि मोहादि उदाहरण उत्कृत्योत्कृत्य कृतिम प्रथम मथ पृथुत सेद भूयांसी मांसनी इत्यादि। यह पद मालती माधा नाटक का इसमें श्मशान का वर्णन है। श्मशान में किसी प्रेत को मांस भक्षण में लगे हुए देखकर उसकी विभत्स चेष्टाओं का वर्णन माधव कर रहा है। यहाँ दरिद्र प्रेत आलम्बन है, मांस नोचना खाना आदि उद्दीपन है। इस चेष्टा को देखने वाले का नाग भाव सिकुड़ना थूकना आदि अनुभव है, उद्वेग आदि संचारी भाव है, जुगुप्सा स्थायी भाव है। इससे सामाजिक में जुगुप्सा प्राकृतिक विभत्स रस अभिव्यक्त होता है। आठ अद्भुत रस स्थायी भाव विस्मय आलम्बन कोई अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ उद्दीपन अलौकिक वस्तु का दर्शन श्रवण या कीर्तन अनुभव प्रशंसा करना गदगद हो जाना संचारी भाव हर्ष आवेग धृति उदाहरण चित्रम महानेश वातावतार कांतिरेशाभिन वैव भंगी लोकोत्तरम धैर्य महो प्रभाव काप्याकृति नूतन एश सर्ग वामनावतार को देखकर राजा बलि की यह उक्ति है। यहाँ चित्र शब्द लोकोत्तर वाचक है, इसलिए स्वर शब्द वाच्यता दोष नहीं है। वामन आलम्बन है, कांति तथा गुणों का अतिशय उद्दीपन है, स्तुति आदि अनुभाव है, मति घृति हर्ष आदि भाव संचारी भाव है। इनसे अभिव्यक्त विश्व में स्थायी अद्भुत रस है। शांत रस एक स्थायी भाव शम या निर्वेद कोष्ठक संसार के प्रति वैराग्य कोष्ठक बंद आलम्बन परमात्मा का चिंतन या जगत के मिथ्या तत्व का ज्ञान उद्दीपन सत्संग पुण्याश्रम तीर्थ स्थान आदि का दर्शन अनुभव रोमांचित या गदगद हो जाना संचारी भाव मति हर्ष स्मृति आदि उदाहरण अहो वा हाये वा कुसुम शयने वा हसदि वा मणौ वा लोष्ठे वा बलवती रिपौ वा सुहृदि वा वृषे वा स्प्रेणे वा मम संदृशो यान्ति दिवसाः क्वचित् पुण्यारम्भे शिव शिव शिवेति प्रलयतः। किसी भगवत भक्त का अपनी जीवनचर्या का यह वर्णन है। सांप और मुक्ताहार में फूलों की सेज और पत्थर की शिला में मणि तथा ढेले में बलवान शत्रु तथा मित्र में तिनके में अथवा स्त्रियों के समूह में समान बुद्धि रखने वाले मेरे दिन किसी पवित्र तपोवन में शिव शिव जपते हुए व्यतीत होते हैं। यहाँ मिथ्या प्रतीति होने वाला जगत आलम्बन है, तपोवन आदि उद्दीपन है, सर्प और हार आदि में संभाव अनुभाव है, धृति प्रबोध मति हर्षादि व्यभिचारी भाव है। इनसे अभिव्यक्त निर्वेद स्थायी भाव से सामाजिक में शांत रस की अनुभूति होती है। आचार्य मम्मट के शब्दों में निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रसः इस प्रकार है। शांत रस के विषय में आचार्यों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। धनंजय ने अपने दश रूपक में तथा धनिक ने उसकी टीका में शांत रस के विरुद्ध अनेक मतों का उल्लेख किया है। एक शांत रस प्रस्थान विरुद्ध है। साहित्य संसार में भरत मुनि के ही वचन प्रमाण माने जाते हैं। उन्होंने शांत रस का विशेष विवेचन नहीं किया है, अतएव भरत द्वारा विशेष अनुभव न होने से शांत रस नहीं है। शम का व्यवहारिक क्षेत्र में अभाव दूसरे आचार्य शम स्थायी शांत की सत्ता ही नहीं मानते हैं। प्रथम मत में शम की केवल काव्य और नाटक में मान्यता स्वीकार नहीं है, परंतु द्वितीय मत ने तो व्यवहारिक क्षेत्र में भी उसकी मान्यता स्वीकार नहीं की, क्योंकि राग द्वेष का प्रवाह मनुष्यों में अनादिकाल से चला आता है, जिसका सर्वथा नाश असंभव है। ऐसी स्थिति में शांत रस का उदय ही कैसे हो सकता है। तृतीय मत अंतर भाववाद। इस मत के आचार्य चित्त की संप्रधान वृत्ति को तो अवश्य मानते हैं, परंतु इसका अंतर्भाव विरादी रसों में कर देते हैं। संप्रधान चित्त में परम तत्व को पाने के लिए जो प्रयत्न होता है वह उत्साहमय होने के से शांत रस वीर में ही अंतर्निविष्ट किया जा सकता है। जब इसमें संसार के विषयों से जुगुप्सा तथा घृणा का भाव प्रबल रहता है, तब इसका अंतर्भाव विभत्स रस के भीतर हो जाता है। यह मत व्यवहार में श्रम का अपलाप तो नहीं करता, परंतु तज्जन्य शांत रस को स्वतंत्र नहीं मानता है। चतुर्थ मत नाटक में शांत रस का निषेध। इस मत के अनुसार शांत रस की स्थिति अवश्य है, परंतु इनका प्रयोग नाटक में नहीं हो सकता। व्यापार के विराम होने पर शांत रस होता है। शांत रस वही होता है जहाँ दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, न द्वेष है और न चिंता है न राग है। न यत्र दुख न सुखम न चिंता न द्वेष रागो न च काचित इच्छा रसः स शांतः कथितो मुनिन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शम प्रधानः। यह स्थिति तो मोक्षावस्था में ही संभव है। नाटक में तो अभिनय होने से व्यापार की ही प्रधानता है। सुख दुख राग द्वेष आदि मनोभावों का प्रदर्शन नाटक में अभिष्ट है। ऐसी दशा में तो शांत रस का अभिनय होना ही मुश्किल है। शांत रस अनिर्वचनीय होता है, अतः रसिकों के आस्वाद के योग्य न होने से शांत रस का प्रयोग नाटक में नहीं हो सकता। यह दश रूपक कार का मत है। पंचम मत शांत रस की सार्वत्रिक स्थिति। अभिनव गुप्त का मत है कि शांत रस काव्य में तथा नाटक में दोनों में रहता है, पर इसके स्थायी भाव के विषय में मतभेद है। शांत रस की सत्ता के विषय में मतभेद नहीं है, बल्कि अभिनव गुप्त के मत में तो शांत रस की ही सर्वश्रेष्ठ रस है। यह प्रकृति रस है, श्रृंगार आदि तो इसकी नाना विकृतियां हैं। कश्मीर के शैवाचार्य अभिनव गुप्त का शांत रस का प्राधान्य बोधक यह मत उनके दार्शनिक दृष्टिकोण के सर्वथा अनुकूल ही है। 10. वात्सल्य रस। विश्वनाथ कविराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में इसे एक स्वतंत्र रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है। हिंदी साहित्यिकों में तुलसी और सूरदास ने इस रस की कविताओं की रचना कर हिंदी साहित्य की उज्जवल किया है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। स्थायी भाव अपने से छोटों में जो प्रेम किया जाता है, जैसे भाई बहन पुत्र कन्या शिष्य आदि में, उसे वात्सल्य कहते हैं। यह स्थायी है। आलंबन माँ बहन पुत्र कन्या आदि। उद्दीपन तोतली बोली आदि उनकी ललित क्रीड़ा आदि। अनुभाव आलिंगन चूमना आदि। संचारी भाव हर्ष गर्व उत्सुकता इत्यादि। उदाहरण यदाह धात्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयाम वलंब्य चांगुलिम अभुच्च नम्र प्रणिपात शिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सोर्भकः। रघुवंश में रघु के शैशवावस्था का यह वर्णन है। यहाँ बालक रघु आलंबन है। धाई के अनुसार तोतली भाषा में उसकी उक्ति उद्दीपन है। आलिंगन चुम्बनादि अनुभाव है। हर्षादि संचारी भाव है। इनसे अभिव्यक्त दिलीप निष्ठ वात्सल्य सामाजिकों के चरवणा का विषय है। 11. भक्ति रस। भक्ति रस के विषय में आचार्य में बड़ा मतभेद है। प्राचीन आचार्य इसे देवता विषय रति मानकर केवल भाव कोटि में ही इसका अंतर्भाव कर देते हैं, परंतु गौणीय वैष्णवों ने इसे रस ही नहीं माना बल्कि सर्वश्रेष्ठ आदि रस माना है। श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ इस विषय के सबसे श्रेष्ठ बोधक तथा परिचायक ग्रंथ है। स्थायी भाव श्री कृष्ण विषय कृति। अन्य देव विषय कृति तो केवल भाव ही होता है, परंतु श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं अतः परमात्मा स्वरूपम। कृष्ण विषय कृति देव विषय कृति से भिन्न पदार्थ है, वही वहाँ स्थायी भाव है। आलंबन श्री कृष्ण राम आदि उद्दीपन भक्तों समागम तीर्थ सेवन आदि अनुभव भगवान के नाम व लीलाओं का कीर्तन आदि संचारी भाव मति हर्ष वितर्क आदि उदाहरण गणिका जामिल मुख्यान वता भवता वताहम सीदन भव मरुगर्ते करुणामूर्ते न सर्वथोपेक्ष्यः अथवा व्याध हूते देहत असाधु हो अजमिल लऊ ग्राहते गुमाहि कैसे तीनमो गिनाओगे कैसे अपनाओगे इत्यादि। यहाँ कवि या भक्त भगवान के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करता है और क्षमा की याचना के अभिप्राय से विनती कर रहा है। भगवान आलम्बन विभाव है तथा भगवत विषय ग्रति स्थायी भाव है, पूर्ण भक्ति चरवणा का विषय है। मूल रस इस प्रकार रसों की संख्या 8 से लेकर 11 तक पहुंच चुकी है, किंतु इनमें भी अनेक आचार्यों ने प्रधानता तथा अप्रधानता की दृष्टि से अलग अलग मूल रसों की कल्पना की है। स्वयं भरत मुनि ने 8 रसों का मूल श्रृंगार रौद्र वीर तथा विभत्स इन 4 रसों को माना है। इन 4 को प्रधान मानकर शेष रसों की उत्पत्ति भी इन्हीं से मानी है। श्रृंगारादि भवेद हास्य रौद्राच करुणो रस वीराचयवाद भूतोत्पत्ति विभत्साच भयानक एक रसवाद। इसके अतिरिक्त अपनी दृष्टि से किसी एक रस को मूल रस मानने की प्रवृत्ति भी साहित्य शास्त्र में पाई जाती है। इस विषय में निम्नलिखित मतों का उल्लेख किया जा सकता है। महाकवि भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र रस मानकर अन्य रसों को उसी का विवर्त माना है। एको रस करुण एव निमित्त भेदात मित्र पृथक पृथगी वाश्यते विवर्तान आवर्त बुद्ध तरंग मयान विकारान अम्भो यथा सलिलमेव हि तत् समस्तम। दो भोजराज ने अपने श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ में श्रृंगार रस को ही एकमात्र मूल रस बतलाते हुए लिखा है। श्रृंगार वीर करुणाद भूत रौद्र हास्य विभत्स वत्सल भयानक शांत नाम नह आमनासी शूरदर्स रसान सुधियो वयम तु श्रृंगारमेव रसनाद रसमाम नामः। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने अपने पूर्वज नारायण पंडित के केवल अद्भुत रस को ही मूल रस मानने का निर्देश किया है। रसे सार चमत्कार सर्वत्राप्यनुभूयते तत्चमत्कार सारत्वात् सर्वत्राप्यद्भुतो रसः तस्माद् भूतमेवाह कृति नारायणो रसम। अभिनव गुप्त ने शांत रस को ही एकमात्र मूल रस प्रतिपादन करते हुए अभिनव भारती में लिखा है। स्वम स्वम निमित्त मासाद्य शांताद् भावः प्रवर्तते पुनर्निमित्तापाये च शांत एवोपलीयते। रसों की सुख दुख रूपता रसों की अलौकिकता के साथ साथ उनकी सुख दुख रूपता का भी प्रश्न प्राचीन साहित्य शास्त्रियों के लिए एक विवेचनीय प्रश्न रहा है। इस विषय में प्रायः 3 प्रकार के मत हैं। एक अभिनव गुप्त ने प्रत्येक रस को उभयात्मक माना है। उनका कहना है श्रृंगार आदि 4 रसों में सुख की मात्रा अधिक है और शेष रौद्र भयानक विभत्स व करुण में इनमें दुख की प्रधानता है, पर आंशिक रूप में सुख भी रहता है, केवल शांत रस पूर्ण सुखात्मक है। दो नाट्य दर्पणकार रामचंद्र व ग्रणचंद्र का मत विभज्यवादी है। उन्होंने श्रृंगार हास्य वीर अद्भुत और शांत रस को सर्वथा सुखात्मक माना है और शेष 4 रसों को सर्वथा दुखात्मक माना है। 3 धनिक धनंजय विश्वनाथ मम्मटादि सभी रसों को नितांत सुख रूप मानते हैं। इन लोगों ने करुण रस को भी सर्वथा सुखात्मक माना है। करुणादावपि रसे जायते यत् परम सुखम सचेत सामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम किंच तेषु यदा दुखम न कोऽपि स्यात् तदुन्मुखः तथा रामायणादीनां भविता दुख हेतुता। भाव का लक्षण भवन्तीति या भावयन्तीति भावाः दो प्रकार से भाव की व्युत्पत्ति हो सकती है। मम्मट ने इसका लक्षण इस प्रकार दिया है। रतिर्देवादि विषयाव्यभिचारी तथांचितः भावः प्रोक्तः देवादि विषयक रति तथा प्राधान्येन अभिव्यक्त व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। उदाहरण हरत्यधम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाम् चरितः कृतम् शुभः शरीर भाजाम् भवदीय दर्शनम् व्यनक्ति कालत्रितयेपि योग्यताम्। नारद जी के आने पर श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हुए कह रहे हैं, आपका दर्शन प्राणियों की वर्तमान भूत भविष्यत तीनों कालों में योग्यता को प्रकट करता है, क्योंकि वर्तमान काल में पाप का नाश करता है, भविष्य में प्राप्त होने वाले कल्याण का कारण बनता है और पूर्व के पुण्य से प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण निष्ठ मुनि विषयक रति होने से भाव ध्वनि है, इसी प्रकार गुरु राजा पुत्र आदि विषयक रति भी भाव ही होते हैं। यही रस और भावों का यदि अनुचित वर्णन किया जाए तो क्रमशः रसाभास और भाषाभास कहलाते हैं। प्राधान्येन अभिव्यक्त व्यभिचारी भाव में यदि अन्य पदार्थ से यदि किसी भाव की निवृत्ति हो जाए तो वहाँ भाव की शांति होती है। उसी प्रकार अन्य भाव के अपसरण परस्पर प्रधान भाव का जहाँ उदय होता है उसे भाव उदय कहते हैं। अभिव्यक्त दो भावों के सम्मिलन में भाव संधि होती है। अभिव्यक्त बहुत से भावों के समुदाय को भाव शबलता कहते हैं। रस ब्रह्म अलंकार मुख्य रस के विद्यमान रहने पर भी कभी कभी ये भाव शांत्यादि भी अंगित्व को प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में रसवत अलंकार होता है। मुख्य रसी पिते गित्वं प्राप्नुवन्ति कदाचन। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भेद। संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि तीन प्रकार का होता है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य एक शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि, दो अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि, तीन उभय शक्त्युद्भव ध्वनि। एक शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि प्रधानतया जहाँ शब्द शक्ति के द्वारा वस्तु और अलंकार अभिव्यक्त हो उसे शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि कहते हैं। शब्द शक्ति के द्वारा वस्तु की अभिव्यक्ति चीर जीवो जोरी जुरे क्यों स्नेह गंभीर कोधरिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। बिहारी का यह दोहा शब्द शक्ति ध्वनि का सुंदर उदाहरण है। वृषभानुजा और हलधर इन शब्दों के सामर्थ्य से दूसरा अर्थ गाय बैल वाला भी अभिव्यक्त होता है। यही इन शब्दों से अभिव्यक्त वस्तु है। शब्द शक्ति के द्वारा अलंकार ध्वनि अभिव्यक्त निरूपादान संभारम भित्ता वेव तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्य कलाश्याध्याय शूलिने। बिना सामग्री और बिना आधार भित्ति के नाना प्रकार के जगत रूप चित्र का निर्माण करने वाले शिर स्थित चंद्रमा की कला से श्लाघनीय उस शिव को नमस्कार है। अन्य कलाकार तुलिका रंग आदि सामग्री से ही चित्र तैयार करता है, परंतु यहाँ भगवान शिव बिना किसी आधार पर बिना किसी सामग्री के ही जगत रूपी चित्र को उत्पन्न कर देते हैं। अतः निरूपादान अभितौ इत्यादि शब्दों से शिव का व्यतिरेक अभिव्यक्त होता है। अतः यहाँ शब्द शक्ति समुत्थ अलंकार ध्वनि है। इस प्रकार संलक्ष्य क्रम व्यंग के शब्द शक्ति मूलक भेद दो हुए और अर्थ शक्ति मूलक भेद 12 होते हैं और उभय शक्ति मूलक भेद 1 है। व्यंग संक्षेप में मुख्य ध्वनि भेद इस प्रकार दिखाए जा सकते हैं। व्यंग ध्वनि एक अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि में अर्थांतर अत्यंत ध्वनि, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि में रस भावादि, संलक्ष्य काव्यर्थ ध्वनि श श उ अ श उ उभय श। वस्तु अलंकार 12 भेद। यह अर्थ शक्ति मूलक 12 प्रकार का ध्वनि भेद इस प्रकार है। एक स्वतः संभवी अर्थ शक्ति मूलक संलक्ष्य क्रम व्यंग, जिस अर्थ की लोक में भी सत्ता हो उससे अभिव्यक्त व्यंग यह 4 प्रकार का होगा। एक स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि, स्वतः संभवी वस्तु से अलंकार ध्वनि, स्वतः संभवी अलंकार से अलंकार ध्वनि, स्वतः संभवी अलंकार से वस्तु ध्वनि। दो कवि प्राढ़ोक्ति सिद्ध, अर्थात जिसकी सत्ता केवल कवि की ही दुनिया में हो, यह भी चार प्रकार का होता है। कवि प्रौढ़ोक्ति वस्तु से वस्तु ध्वनि, कवि प्रौढ़ोक्ति वस्तु से अलंकार ध्वनि, कवि प्रौढ़ोक्ति अलंकार से अलंकार ध्वनि, कवि प्रौढ़ोक्ति अलंकार से वस्तु ध्वनि, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति, जहाँ कवि के द्वारा निबद्ध वक्ता से कोई बात कही गई हो, यह भी चार प्रकार का है। कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति वस्तु से वस्तु ध्वनि, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति वस्तु से अलंकार ध्वनि, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति अलंकार से अलंकार ध्वनि, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति अलंकार से वस्तु ध्वनि। इस प्रकार अर्थ शक्ति मूलक संलक्ष क्रम व्यंग्य 12 प्रकार का होता है और शब्दार्थो भय शक्ति मूलक संलक्ष क्रम व्यंग एक ही प्रकार का होता है। उदाहरण, अतंद्र चंद्रा भरणा समुद्दीपित मन मथा तारका तरला श्यामा सा नंदम न करोति कम। चमकते हुए चंद्रमा से विभूषित काम को समुद्दीपित करने वाली तारिकाओं से तरल श्यामा किसको आनंदित नहीं करती है। यहाँ पूर्वार्ध के विशेषण आनंद चंद्राभरण समुद्दीपित मनमथा ये परिवृत्ति स होने से अर्थ शक्ति मूल का है और तारका तरल श्यामा ये परिवृत्ति होने से शब्द शक्ति मूलक है। अतः उभय शक्ति मूलक या संलक्ष क्रम ध्वनि भेद है। यहाँ यह श्यामा रात्रि श्यामा षोडश वर्षीय बाला के समान है, यह अर्थ व्यंग है। इस प्रकार सब मिलाकर ध्वनि के 18 भेद हुए। अष्टादश ध्वनि का विस्तार 51 भेद। अविवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थांतर वाच्य पदगत वाक्यगत अत्यंत तीर वाच्य पदगत वाक्यगत विवक्षितान्य परवाच्य असंलक्ष क्रम व्यंग्य रस पदगत वाक्यगत पदांशगत रचनागत वर्णगत प्रबंधगत छ। विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि शब्द शक्ति उद्भव वस्तु व अलंकार पदगत वाक्यगत 4, अर्थ शक्ति उद्भव के 12 भेद पद वाक्य प्रबंधगत 36, उभय शक्ति उद्भव 1। इन 51 भेदों के परस्पर संसृष्टि होने से 51×51=2601 हो जाएंगे। 3 प्रकार के संकर तथा 1 प्रकार की संसृष्टि 4 प्रकार से फिर गुणन करने पर 10,404 संख्या होगी। पुनः शुद्ध 51 भेद जोड़ देने से 10,455 ध्वनि भेद हुए। यथा पद द्योत्य अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण हिंदी में राधा अतिगुण आगरी स्वर्ण वरण तनुरंग मोहन तु मोहन भयो परसत जाके अंग। यहाँ पहला मोहन शब्द कृष्ण का वाचक है, दूसरा मोहन शब्द सबको मोहित करने की सामर्थ्य आदि से युक्त मोहन का बोधक है। अतः अर्थांतर में संक्रमित हो जाने से यह पद द्योत अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। इसी प्रकार यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा अनुक्रमप्योनुकम्प्यश्च स जातः स च जीवति। यहाँ द्वितीय मित्रादि शब्द अश्वस्त नियंत्रणीयत्व स्नेह पात्रत्वादि अर्थों में संक्रमित हो जाने से भी यह पद प्रकाश अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का भेद है। काव्य प्रकाश में ध्वनि निरूपण नामक चतुर्थ उल्लास परिसमाप्त।